नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन के लिए 1,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वडेफुल ने अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन की बैठक में कर दरों को युक्तिसंगत बनाने और अनुपालन को सरल करने सहित अगली पीढ़ी के सुधारों पर विचार विमर्श हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 9 महिलाओं सहित 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। उत्तर पश्चिमी भारत में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश बाढ़ और व्यापक विनाश का सामना कर रहे हैं। और बिहार में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत और कोरिया के बीच सुपर फोर मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सहायक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमता का निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाना है। योजना की अवधि 6 वर्षों के लिए चालू वित्त वर्ष से वित्त वर्ष 2030-31 तक होगी। यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ साथ मौजूदा इकाइयों की क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण पर भी लागू होगी। योजना के तहत प्रोत्साहनों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उत्पादन शुरू करने के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी शामिल होगी। योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहलों से कम 270 किलो टन वार्षिक रिसाइकिल क्षमता विकसित होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 40 किलो टन वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन होगा। इन पहलों से लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वारेफुल ने आज नई दिल्ली में वार्ता की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा, रक्षा, जलवायु, भावी तकनीकों और लोगों के बीच परस्पर विचारों का आदान प्रदान किया।
We have just completed a very productive discussion on India-Germany cooperation, on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global and multilateral issues. We've had detailed discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility and people-to-people exchanges.
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जर्मनी ने आतंकवादी हमलों से भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है।
We greatly value the understanding that Germany has shown with regard to India's fight against terrorism. Minister Wadefull has himself been explicit about our right to defend our people against terrorist attacks. Our parliamentary delegation that visited Germany in June after Operation Sindoor was also warmly received. There's been an uptick in our defense and security cooperation.
जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वडेफुल ने प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की सराहना की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें देश के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इनमें कर की दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि उनकी पार्टी जीएसटी में केंद्र सरकार के प्रस्तावित बड़े सुधारों का समर्थन करेगी।
From Andhra Pradesh, we are supporting the major reforms in the GST sector, which are being proposed by Government of India. Most of them are going to help the common man and poorest of the poor. They are coming from the food sector, education, health, steel, cement, textiles, all the reforms which are being proposed by the Government of India to bring down the burden on the common man.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व पर बल दिया था।
पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं, ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने हुई मंत्री समूह की बैठक में जीएसटी में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव रखा था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सेमीकंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों तथा परियोजनाओं की जानकारी ली। श्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के सीईओ गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। 3 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से डिजिटल युग में उपलब्ध विशाल शिक्षण संसाधनों का उपयोग करने का आग्रह किया है। तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के उद्योग चौथे चरण के लिए तैयार हैं और विद्यार्थियों को इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप समाज के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की करेगुटालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों को सम्मानित किया। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान जवानों की बहादुरी और पराक्रम को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 महिलाओं सहित 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि ये माओवादी हिंसा की कई घटनाओं में शामिल थे।
20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य है। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र रखने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे लोकतंत्र से मतलब नहीं है, वोट छलावे से मतलब है। हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी उच्च स्तरीय जांच करे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और राहुल गांधी अपनी इस चुप्पी को फौरन तोड़े।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से कई राज्य जलमग्न सड़कों और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बादल फटने की कई घटनाओं से अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से चेनाब नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा व भूस्खलन की घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि 15 अन्य घायल हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर चलाया गया। मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में फंसे करीब 80 यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा पहुंचाकर उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मणिमहेश में फंसे 700 श्रद्धालुओं को वायुसेना हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए हैं। खराब मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को आगामी 7 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली। भूस्खलन और मलबे के कारण अवरुद्ध सड़कों को फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्षा से राज्य में काफी नुकसान हुआ है और प्रभावित जिलों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
आकलन अभी कर रहे हैं और काफी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है, कहीं जल भरा हुआ है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है।
दिल्ली NCR में आसपास के बैराजों से लगातार अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण खतरे की चेतावनी दी गई है। पंजाब में अत्यधिक बारिश के कारण भाखड़ा, पौंग और रंजीत सागर बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और सतलुज, ब्यास तथा रावी नदियों के उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा करेंगे। वो सबसे ज्यादा प्रभावित अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के कुछ गांवों में प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे। कृषि मंत्री के दौरे के बाद राज्य और केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक होगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार संकट की घड़ी में पंजाब के साथ खड़ी है।
अपने किसान भाइयों बहनों से, अपनी जनता से यही मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है, राज्य सरकार के साथ मिलकर जनता को इस संकट से पार ले जाने के लिए हर संभव उपाय करेगी। जनता से, किसानों से चर्चा करूंगा और जनता को संकट के पार निकालने में कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार से भी चर्चा करके, क्योंकि संकट के समय हम सब एक हैं, हम आवश्यक जो उपाय करने होंगे उन पर चर्चा करेंगे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश भर में मूसलाधार बारिश के बीच पृथ्वी विज्ञान और मौसम विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मजबूत शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और वास्तविक समय में मौसम अपडेट की आवश्यकता पर बल दिया। मौसम विभाग ने गुजरात में कुछ स्थानों पर कल बहुत तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश के उत्तरी भागों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के फर्जी पोर्टल के लिए आगाह किया है। कुछ वेबसाइट सरकार के उपक्रम होने का झूठा दावा कर रही हैं। सभी नागरिकों, नियोक्ताओं और हितधारकों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइट और भर्ती के झूठे दावों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई भुगतान करें। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी बिराज दास का आज गुवाहाटी में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे 1966 में केंद्रीय सूचना सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने गुवाहाटी के PIB में सूचना सहायक के पद पर कार्य शुरू किया था। वे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में आकाशवाणी संवाददाता थे। 1996 में उन्हें कोलंबो में विशेष संवाददाता नियुक्त किया गया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज आधा प्रतिशत की बढ़त से 410 अंक उछलकर 80,568 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% की मजबूती से 135 अंक बढ़कर 24,715 के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की बढ़त से 88.07 रुपए पर दर्ज हुआ।
भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत INS त्रिकंद युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है। यह अभ्यास 10 सितंबर तक चलेगा। अभ्यास में अमेरिका, मिस्र और भारत के अलावा सऊदी अरब, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली की सेनाओं के भी भाग लेने की उम्मीद है। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर फोर दौर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला जारी है। बारिश के कारण मुकाबला देरी से शुरू हुआ। ताजा समाचार मिलने तक कोरिया की टीम 2-1 से आगे है। सुपर फोर के पहले मुकाबले में आज मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के सर्वोत्तम प्रथाओं के संग्रह के रूप में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। डॉ. कुमार ने कहा कि प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र मानक संचालन प्रक्रियाओं, नवाचारों, सीखने के ज्ञान के केंद्र के रूप में काम करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन के लिए 1,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाटेफुल ने अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। GST परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 9 महिलाओं सहित 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और बिहार में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत और कोरिया के बीच सुपर फोर मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।